एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब को समझने की कोशिश करने वाले हैं जिसने न जाने कितने सालों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। बारोक स्पिनोजा की महान कृति एथिक्स, मतलब नीति शास्त्र।
हाँ, नीति शास्त्र। अब ये नाम सुनकर तो शायद यही लगता है कि भाई क्या सही है क्या गलत, बस इसकी लिस्ट होगी, पर ये किताब उससे कहीं ज्यादा गहरी है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल। ये सिर्फ क्या करें क्या ना करें वाली बात नहीं है, ये तो असल में समझने की कोशिश है कि ये दुनिया, ये हकीकत आखिर है क्या। हम इंसान सोचते कैसे हैं, हमारी भावनाएं वो कैसे काम करती हैं, और क्या सच में कोई तरीका है जिससे सच्ची आजादी और जिसे कहते हैं ना टिकाऊ खुशी मिल सके।
और देखिए, आज के टाइम में ये चीजें कितनी जरूरी हो गई हैं। हम सब खुशी ढूंढते हैं, कभी चीजों में, कभी लोगों में, और अक्सर अपनी ही भावनाओं में, मतलब गुस्से में, चिंता में, उदासी में फंस जाते हैं।
सही कह रहे हैं।
स्पिनोजा ने तो लगभग 350 साल पहले ही कह दिया था कि इन सबसे निकलने का रास्ता जो है वो समझ से होकर जाता है।
बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा यही है कि स्पिनोजा के ये जो थोड़े मुश्किल से लगने वाले, कभी कभी तो गणित जैसे लगते हैं ये विचार, इनको आसान भाषा में समझें।
हाँ, और देखें कि ये इतनी पुरानी बातें आज भी हमारे किस काम आ सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले उस इंसान से जिसने ये सब सोचा।
जरूर। बारोक स्पिनोजा।
कौन थे ये स्पिनोजा?
बारोक स्पिनोजा वो 17वीं सदी के एक डच दार्शनिक थे, 1632 से 1677 तक। उनका परिवार पुर्तगाल से आया हुआ यहूदी था और वो अपने ज़माने के सबसे असरदार और सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा विवादों में रहने वाले विचारकों में से थे।
विवादों में? ऐसा क्या कह दिया था उन्होंने?
देखिए, उन्हें पारंपरिक यहूदी शिक्षा तो मिली थी, पर उनके जो विचार थे वो उस वक्त के धर्म और दर्शन दोनों की जमी जमाई बातों को सीधी चुनौती देते थे। खासकर ईश्वर और प्रकृति पर उनके विचार इतने मतलब क्रांतिकारी थे कि सिर्फ 23 साल की उम्र में उन्हें उनके ही यहूदी समुदाय ने बहिष्कृत कर दिया, मतलब समाज से ही निकाल दिया।
अरे, सिर्फ 23 साल की उम्र में? ये तो बहुत सख्त सजा हुई।
हाँ, बहुत। अपने विचारों की आज़ादी के लिए उन्होंने बड़ी कीमत चुकाई और इसके बाद उन्होंने काफ़ी अकेला जीवन जिया। गुजारा करने के लिए वो लेंस घिसने का काम करते थे, चश्मों और दूरबीनों के लिए, और साथ साथ अपना दर्शन, अपनी फिलॉसफी बनाते रहे।
लेंस घिसते हुए फिलॉसफी, कमाल है।
हाँ, और उनकी सोच की खासियत ये थी कि उसमें गणित जैसी सटीकता थी, इंसान के मन की गहरी समझ थी और एक तरह की, क्या कहें, आध्यात्मिक नज़र भी थी। इन सबका मेल था।
तो मतलब उनपे अपनी यहूदी पृष्ठभूमि का भी असर था और उस जमाने के जो नए वैज्ञानिक विचार आ रहे थे उनका भी। बिल्कुल, इसी मेलजोल से ईश्वर, प्रकृति और इंसान को लेकर उनका नजरिया बिल्कुल अनोखा बना। वो सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं करते थे, उनके तर्क बहुत मजबूत होते थे।
तो अब आते हैं उनकी सबसे मशहूर किताब एथिक्स पर। कोई पूछे कि भाई ये किताब आखिर है किस बारे में, तो क्या कहेंगे?
देखिए, ये स्पिनोजा का सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी काम है। इसमें वो कोशिश करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का और उसमें इंसान का क्या रोल है, इसका एक पूरा नक्शा बना दें। और सबसे अजीब बात है इसका तरीका।
तरीका? कैसा तरीका?
ये किताब लिखी गई है यूक्लिड की ज्यामिति की तरह।
क्या
ज्यामिति? मतलब जैसे स्कूल में पढ़ते थे, परिभाषाएं, प्रमेय।
हाँ, थोड़ी मेहनत तो है। देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो सच में ये जानना चाहते हैं कि ये दुनिया, ये सब कुछ जो है, ये असल में है क्या।
ये किताब एक सफर की तरह है। शुरू होती है सबसे बड़े सवालों से, ईश्वर क्या है, और धीरे धीरे ये हमें इंसान के मन, उसकी भावनाओं और फिर रोजमर्रा की नैतिकता तक ले आती है।
अच्छा, मतलब बड़े फलसफों से शुरू होकर प्रैक्टिकल जिंदगी तक।
बिल्कुल, स्पिनोजा एक पूरा वर्ल्ड व्यू बनाते हैं जिसमें सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, फिजिक्स, साइकोलॉजी, नैतिकता, आध्यात्मिकता, सब। और वो हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम खुद को दुनिया का सेंटर मानना छोड़ दें।
दुनिया का सेंटर मतलब?
मतलब ये सोचना कि सब कुछ हमारे लिए ही बना है। वो कहते हैं, नहीं, हम भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है। जिन नियमों से पत्थर या तारे चलते हैं, वही नियम हम पर भी लागू होते हैं।
तो इसका मतलब ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि अच्छा इंसान कैसे बने, बल्कि ये सवाल उठाती है कि अच्छा या बुरा होने का मतलब ही क्या है, है ना? हाँ, बिल्कुल सही समझे। इसका मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि आखिर में इंसान को ज्यादा खुश और ज्यादा आजाद बनाना है।
और ये आजादी मिलेगी कैसे?
अपनी भावनाओं को समझकर। जो भावनाएं हमें नुकसान पहुंचाती हैं उन्हें समझकर ऐसी भावनाओं में बदलना जो हमें ताकत दें। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों की समझ पर आधारित एक प्रैक्टिकल तरीका है।
ठीक है, चलिए अब किताब के अंदर चलते हैं। आपने कहा ये 5 हिस्सों में है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला भाग है ईश्वर पर, इसमें क्या खास बात है?
यहीं पर वो सबसे मतलब धमाकेदार विचार रखते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक ही मूल चीज सब्सटेंस है, और वो चीज एक ही साथ ईश्वर भी है और प्रकृति भी। उनका एक मशहूर फॉर्मूला है, देउस सिवे नातुरा, मतलब ईश्वर या प्रकृति।
एक मिनट, ईश्वर और प्रकृति एक ही है? ये तो उस सोच से बिल्कुल उल्टा है कि ईश्वर कहीं ऊपर बैठा और दुनिया चला रहा है।
बिल्कुल, स्पिनोजा उस ईश्वर को नहीं मानते जो दुनिया से अलग है। उनके लिए जिसे हम ईश्वर कहते हैं और जिसे हम प्रकृति कहते हैं वो एक ही चीज के दो नाम हैं।
ये जो मूल तत्व है ये अनंत है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और इसका कारण ये खुद ही है।
और बाकी सब चीजें,
आप, ये पेड़, पहाड़,
वो सब इसी एक तत्व के अलग अलग रूप हैं, मोड्स हैं,
अलग अलग तरह से दिखना या होना।
अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो प्रकृति के नियम है वही ईश्वर के नियम है। तो फिर साइंस पढ़ना भी एक तरह की भक्ति हो गई।
बिल्कुल, यही इसका गहरा मतलब है, और यहीं से वो नियतिवाद का आइडिया भी आता है। मतलब दुनिया में जो कुछ भी होता है वो तय नियमों के हिसाब से ही होता है, होना ही है, कुछ भी अचानक या बाय चांस नहीं होता।
ये तो बड़ी बात है। ठीक है, ये हुई नींव। अब भाग 2, मन की प्रकृति और उत्पत्ति पर। यहाँ मन और शरीर के बारे में क्या कहते हैं स्पिनोजा? यहाँ वो मन शरीर के रिश्ते पर एक और बहुत अनोखा विचार देते हैं। इसे कहते हैं मन शरीर समानांतरवाद,
माइंड बॉडी पैरेललिज्म।
वो मानते हैं कि मन और शरीर ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं जो एक दूसरे पर असर डालती हो।
अच्छा,
अलग नहीं है
तो फिर क्या है?
वो कहते हैं ये एक ही चीज के दो पहलू है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, वैसे ही एक मानसिक पहलू है जिसे हम मन कहते हैं, और एक भौतिक पहलू है जिसे हम शरीर कहते हैं।
अच्छा, तो हमारा मन क्या है? कोई आत्मा जैसी चीज नहीं?
स्पिनोजा के हिसाब से मन हमारे शरीर का ही विचार है। ये शरीर से अलग नहीं बल्कि उसका एक तरह का मानसिक अक्स है। जो शरीर में होता है उसी के पैरेलल कुछ मन में भी होता है, और जो मन में होता है उसी के पैरेलल शरीर में।
ओके।
इसी भाग में वो ज्ञान पर भी बात करते हैं कि कैसे हमें सही समझ, एडिक्वेट आइडियाज मिलती है, और कैसे हम कभी कभी भ्रम, इनएडिक्वेट आइडियाज में पड़ जाते हैं। हमारी असली ताकत जो है वो सही समझ से ही बढ़ती है।
और वो जो हम कहते हैं फ्री विल, अपनी मर्जी से चुनना, क्या हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं?
स्पिनोजा कहते हैं ये एक भ्रम है। हमें लगता है कि हम चुन रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ अपनी इच्छाओं को जानते हैं। उन इच्छाओं के पीछे जो कारण है उन्हें हम नहीं जानते।
जैसे?
कोई उदाहरण?
जैसे मान लीजिए हमें प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं। हमें लगता है ये हमारा फैसला है, पर इसके पीछे शरीर के अंदर की पूरी केमिस्ट्री है। वो कारण हम पूरी तरह नहीं जानते, हम बस इच्छा को महसूस करते हैं।
ये बात तो सोचने वाली है।
खैर, अब आते हैं भाग 3 पर, भावनाओं की उत्पत्ति और प्रकृति पर। ये तो लगता है हमारी रोज की जिंदगी से काफी जुड़ाव होगा।
हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। स्पिनोजा कहते हैं कि भावनाएं जैसे खुशी, दुख, गुस्सा, प्यार, ये कोई जादू या रहस्य नहीं है। ये भी प्राकृतिक घटनाएं हैं और इन्हें समझा जा सकता है, वैसे ही जैसे हम मान लीजिए मौसम को समझते हैं।
अच्छा, भावनाओं को मौसम की तरह समझना।
हाँ, उन्होंने भावना अफेक्टस को परिभाषित किया। ये हमारे शरीर और मन में होने वाले वो बदलाव हैं जिनसे हमारी काम करने की शक्ति, पावर ऑफ एक्टिंग, या तो बढ़ती है या घटती है।
काम करने की शक्ति, इसका क्या मतलब है यहाँ?
यहीं पर आता है कोनाटिस का विचार। ये बहुत जरूरी है। कोनाटिस मतलब हर चीज की, सिर्फ इंसानों की नहीं, हर चीज की अपने आप को बनाए रखने और बढ़ाने की बुनियादी कोशिश, एक तरह की जीने की जिद।
जीने की जिद,
हाँ कह सकते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश। इंसानों में जब ये कोशिश हमें पता होती है, सचेत होती है, तो वो इच्छा बन जाती है। स्पिनोजा तीन सबसे बेसिक भावनाएं बताते हैं।
कौन सी तीन?
पहली इच्छा, जो कोनाटिस का ही रूप है। दूसरी खुशी या आनंद, ये तब होती है जब हमारी शक्ति बढ़ती है, हम ज्यादा काबिल महसूस करते हैं। और तीसरी दुख, सैडनेस, ये तब होती है जब हमारी शक्ति घटती है, हम कमजोर महसूस करते हैं।
बस तीन? लेकिन हमारी भावनाएं तो इतनी सारी होती हैं। प्यार, नफरत, उम्मीद, डर, गर्व, शर्म, इन सब का क्या?
हाँ, यही तो बात है। स्पिनोजा का तर्क है कि ये सारी जो जटिल भावनाएं हैं ना, ये इन्हीं तीन मूल भावनाओं और हमारे विचारों के मिलने जुलने से बनती हैं।
अच्छा, कैसे? जैसे प्यार?
हाँ, प्यार क्या है? वो खुशी है जो हमें किसी बाहरी चीज या इंसान के बारे में सोच कर मिलती है। और नफरत वो दुख है जो किसी बाहरी चीज या इंसान के विचार से जुड़ा है। वो ये भी बताते हैं कि कुछ भावनाएं निष्क्रिय होती हैं, मतलब बाहर से आती हैं, हम पर हावी हो जाती हैं और हमारी शक्ति कम करती हैं। और कुछ सक्रिय होती हैं, जो हमारी अपनी समझ, हमारे तर्क से पैदा होती हैं और हमारी शक्ति बढ़ाती हैं।
ये तो भावनाओं को देखने का एक बिल्कुल वैज्ञानिक नजरिया लग रहा है। अब भाग चार, मानव बंधन पर या भावनाओं की शक्ति पर। यहाँ बंधन का क्या मतलब है? कोई गुलामी?
हाँ, आप कह सकते हैं एक तरह की मानसिक गुलामी। मानव बंधन वो हालत है जब हम अपनी समझ, रीजन से नहीं चलते, बल्कि बाहरी चीजों से पैदा हुई कमजोर, अस्थिर भावनाओं और गलत विचारों के काबू में होते हैं। ये हिस्सा हमें बताता है कि हम दुखी क्यों होते हैं, कैसे हमारी भावनाएं अक्सर हमारे सही गलत सोचने की ताकत पर हावी हो जाती हैं।
और इसमें वो बताते हैं कि कैसे अच्छा और बुरा के बारे में हमारी जो गलत धारणाएं हैं या अंधविश्वास हैं, नफरत है, डर है, ये सब चीजें हमें अंदर से कमजोर करती हैं।
बिल्कुल, यही सब हमें बांधता है।
तो इस गुलामी से निकलने का रास्ता क्या है? क्या हम बस जोर लगाकर, मतलब इच्छा शक्ति से अपनी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं?
स्पिनोजा कहते हैं नहीं, सिर्फ इच्छा शक्ति से काम नहीं चलेगा। एक भावना को हराने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर भावना चाहिए, और वो ताकतवर भावना आती है समझ से, तर्क से।
समझ से?
हाँ, और यही वो अच्छा और बुरा की परिभाषा भी बदलते हैं। उनके लिए अच्छा वो है जो सच में हमारे लिए फायदेमंद है, जो हमारी शक्ति को, हमारी काबिलियत को बढ़ाता है, और बुरा वो है जो इसमें रुकावट डालता है। ये जरूरी नहीं कि समाज जिसे अच्छा बुरा कहता है वही हो।
ये भी अलग बात है।
और फिर आता है आखिरी भाग, भाग वी, बुद्धि की शक्ति पर या मानव स्वतंत्रता पर। लगता है यहाँ जवाब मिलेगा कि कैसे आजाद हों।
हाँ, ये पूरी किताब का जैसे निचोड़ है, उस मानसिक गुलामी से निकलने का रास्ता। स्पिनोजा बताते हैं कि असली आजादी और खुशी कैसे मिलती है, अपनी सोचने समझने की शक्ति, रीजन को बढ़ाकर और अपनी भावनाओं को समझकर उन्हें बदलकर। जब हम चीजों को साफ साफ समझने लगते हैं, मतलब एडिक्वेट आइडियाज बना पाते हैं, तो हम बाहरी घटनाओं के गुलाम नहीं रहते।
तो यहाँ पर वो सक्रिय भावनाएं काम आती हैं जिनका जिक्र पहले हुआ था, से हिम्मत, उदारता, मन की शांति। ये वो भावनाएं हैं जो हमारे अंदर की समझ से पैदा होती हैं, न के बाहर के हालात से। स्पिनोजा यहाँ ज्ञान के सबसे ऊंचे लेवल की बात करते हैं, जिसे वो कहते हैं सहज ज्ञान।
सहज ज्ञान, ये क्या है?
ये वो अवस्था है जहाँ हम चीजों की और पूरी कायनात की एकता को सीधे सीधे महसूस कर लेते हैं, बिना तर्क के स्टेप्स के, एक तरह की सीधी पकड़।
और इस गहरी समझ से मिलता क्या है?
इसी गहरी समझ से पैदा होती है वो हालत जिसे स्पिनोजा कहते हैं ईश्वर का बौद्धिक प्रेम, अमोर दे इंटेलेक्चुअलिस।
ईश्वर का प्रेम? ये कैसा प्रेम है?
ये कोई रोमांटिक प्रेम नहीं है, ये ब्रह्मांड के जो नियम है, उसकी जो सुंदरता है, उसको समझने से पैदा हुई एक गहरी शांति और आनंद की भावना है। दुनिया जैसी है उसे स्वीकार करने का भाव है, बिना किसी शिकायत के।
तो स्पिनोजा के लिए असली स्वतंत्रता, असली फ्रीडम का मतलब क्या हुआ? क्या ये कि हम जो चाहे चुन सके?
नहीं, क्योंकि उनके लिए चुनने की आजादी तो एक भ्रम है। असली स्वतंत्रता है अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार जीना, वजहों से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर अपने जीवन का कंट्रोल अपनी समझ को देना।
और खुशी?
हाँ, सबसे बड़ी बात, खुशी या धन्यता वो कोई इनाम नहीं है जो अच्छे काम करने के बाद मिलेगा, बल्कि वो समझदारी भरा जीवन जीना, वो तरीका ही अपने आप में खुशी है।
वाह, ये तो सच में विचारों की पूरी अलग दुनिया है। चलिए कुछ मेन थीम्स को एक बार फिर से दोहराते हैं ताकि सबको ठीक से याद रहे। पहला और सबसे खास, ईश्वर ही प्रकृति है।
हाँ, यानी सब कुछ एक है, मोनिज्म, और सब कुछ में ही ईश्वर है, पैंथीज्म। ये सोच हमें प्रकृति को, साइंस को एक अलग नजर से देखने को कहती है। मतलब जंगल में घूमना भी एक तरह की इबादत हो सकती है।
सही बात है। दूसरा बड़ा आइडिया, सब कुछ तय है, डिटर्मिनिज्म, फिर भी आजादी मुमकिन है। पर यह सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता कि अगर सब तय है तो आजादी कैसी?
हाँ, लगता तो है, पर स्पिनोजा की आजादी का मतलब है चीजों के कारणों को समझना। जब हम समझते हैं कि कोई चीज क्यों हो रही है, तो हम उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये किस्मत के भरोसे बैठना नहीं है, बल्कि समझ के जरिए ज्यादा ताकतवर बनना है।
जैसे
अगर हमें पता है कि ट्रैफिक जाम क्यों लगा है, तो हम बेकार में गुस्सा करने या हॉर्न बजाने के बजाय शायद कोई और रास्ता सोचें या उस टाइम का कुछ और इस्तेमाल करें। समझ हमें बेहतर विकल्प देती है।
तीसरा, भावनाओं को सही गलत के चश्मे से नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक की तरह देखना, उन्हें समझना, उन पर लेबल नहीं लगाना।
बिल्कुल, अगर गुस्सा आ रहा है तो ये सोचने के बजाय कि अरे मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं बुरा हूँ, ये पूछें कि अच्छा ये गुस्सा क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या कारण है। जब कारण समझ आता है तो भावना की पकड़ ढीली पड़ जाती है। आजकल जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते ना, उसकी जड़ें यहाँ दिखती हैं।
हाँ, सही कहा। चौथा, कि नैतिकता या अच्छा होना किसी बाहरी हुक्म से नहीं आता बल्कि अपनी शक्ति, कनाटस, अपनी काबिलियत को बढ़ाने से आता है। अच्छा वो है जो हमें ज्यादा सक्षम बनाए।
सही, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो फैसले लेते हैं अपने करियर में, रिश्तों में, क्या वो वाकई हमें अंदर से मजबूत बना रहे हैं या हम सिर्फ समाज क्या कहेगा इस डर से या किसी और वजह से वो कर रहे हैं।
और पांचवा, वो परम शांति और संतुष्टि जो समझ से मिलती है, ईश्वर का बौद्धिक प्रेम।
हाँ, ये वो खुशी है जो बाहरी चीजों पर, सफलता पर निर्भर नहीं करती। ये दुनिया को और खुद को गहराई से समझने से पैदा होने वाली एक अंदरूनी शांति है।
स्पिनोजा के यहाँ ऐसे कई विचार हैं जो दिमाग में घूमते रहते हैं। कुछ खास विचारों या कोट्स के सार को देखें जरा।
जरूर, पहला तो वही सबसे मशहूर, देउस सिवे नातोरा, ईश्वर या प्रकृति। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक पूरी सोच है जो कहती है कि भगवान कहीं सातवें आसमान पर नहीं, यही है प्रकृति में, हर चीज में।
हाँ, एक और बहुत असरदार बात है, स्वतंत्र व्यक्ति मृत्यु के बारे में सबसे कम सोचता है और उसकी बुद्धिमत्ता मृत्यु पर नहीं बल्कि जीवन पर ध्यान है।
कितनी पॉजिटिव बात है ये। फोकस इस पर होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी कैसे बेहतर जिएं, समझदारी से जिएं, ना कि मौत के डर में। ज्ञान हमें जीना सिखाता है, मरना नहीं।
बिल्कुल, फिर धन्यता पुण्य का पुरस्कार नहीं बल्कि स्वयं पुण्य है। यानी खुशी अच्छे काम का रिजल्ट नहीं है बल्कि अच्छा यानी समझदारी भरा जीवन जीना ही अपने आप में खुशी है।
हाँ, ये हमें नतीजे की चिंता से थोड़ा आजाद करता है। सही रास्ते पर चलना ही मंजिल है, कह सकते हैं।
एक और बहुत जरूरी बात जो उन्होंने कही, मैंने मानवीय कार्यों पर हंसने, रोने या घृणा करने का नहीं बल्कि उन्हें समझने का प्रयास किया है।
ये एक वैज्ञानिक और साथ ही एक दार्शनिक नजरिया है। दूसरों के कामों पर फौरन जजमेंट पास करने के बजाय उनके पीछे के कारणों को, उनकी मजबूरियों को समझने की कोशिश करना, इससे हमदर्दी भी बढ़ती है।
और कोनार्ट्स की वो परिभाषा, अपने अस्तित्व में बने रहने का प्रयास ही वस्तु का वास्तविक सार है।
हाँ, ये हमारे मनोविज्ञान और हमारी नैतिकता की जड़ है, हमारा बेसिक नेचर ही है, जीना, बढ़ना, फलना फूलना।
ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत गहरा है, पर क्या हम इन विचारों को अपनी रोज की जिंदगी में, मतलब प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पहला तो यही है कि अपनी भावनाओं को बेहतर समझें और संभालें। जब गुस्सा आए या चिंता हो या जलन महसूस हो, तो उसे बुरा मानकर दबाने की कोशिश करने के बजाय रुक कर सोचें, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे मेरी कौन सी सोच काम कर रही है, क्या वो सोच सच है, क्या कोई और तरीका है इसे देखने का। ऐसा करने से अक्सर भावना की जो पकड़ है वो कम हो जाती है।
और वो जो नियति बात वाली बात थी कि सब कुछ तय है, उसे कैसे इस्तेमाल करें, क्या इससे हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ जाएंगे?
नहीं, इसे हम चीजों को स्वीकार करना, रेडिकल एक्सेप्टेंस कहते हैं ना आजकल, और मन की शांति पाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जो हो चुका है या जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, उस पर दुखी होने, गुस्सा करने या पछताने से क्या फायदा? सिर्फ हमारी एनर्जी वेस्ट होती है।
सही बात है।
बेहतर है कि हम अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाएं जिन्हें हम बदल सकते हैं, जैसे हमारी अपनी सोच, हमारी प्रतिक्रिया। ये हमें मुश्किल हालात में ज्यादा मजबूत बनाता है।
और लोगों के साथ, मतलब रिश्तों में इसका कोई फायदा है?
हाँ, बहुत। अगर हम ये समझ पाएं कि दूसरे लोग भी अपनी समझ, अपने डर, अपनी इच्छाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं, भले ही वो हमें गलत लग रहा हो, तो शायद हम उन्हें कम जज करें और ज्यादा समझने की कोशिश करें। नफरत या इल्ज़ाम लगाने के बजाय हम सोच सकते हैं, पता नहीं इसके पीछे क्या वजह होगी कि ये इंसान ऐसा कर रहा है। इससे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, हमदर्दी बढ़ सकती है।
और क्या, ये हमें एक तरह की आध्यात्मिक शांति दे सकता है, भले ही हम पारंपरिक तरीके से धार्मिक न हों।
हाँ, जरूर। प्रकृति के नियमों को समझने में, ब्रह्मांड की विशालता और उसकी बारीकियों को देखने में, या अपने ही मन की गहराइयों को जानने में, इसी में एक तरह का अचरज, एक जुड़ाव महसूस हो सकता है। ये तर्क और विज्ञान पर आधारित एक श्रद्धा हो सकती है।
तो आखिर में अगर एक सबसे कीमती सबक लेना हो स्पिनोजा से, तो वो क्या होगा?
मुझे लगता है सबसे जरूरी बात ये है कि असली आज़ादी और खुशी बाहरी चीज़ों को पाने या अपनी हर इच्छा पूरी करने से नहीं मिलती। वो मिलती है दुनिया को और खुद को समझने से। जब हम चीज़ों को साफ साफ, बिना भावनाओं के धुंधलके के देखना सीख जाते हैं, तो हम बाहरी हालात के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने जीवन के ड्राइवर बन जाते हैं। समझ ही असली शक्ति है।
हाँ, मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली रही वो शायद यही है कि आज़ादी का मतलब मनमर्जी करना नहीं, बल्कि ज़रूरत यानी चीज़ें जैसी हैं, क्यों हैं, उसे समझना है। ये हमारी जो आम आज़ादी की सोच है उससे कितना अलग है। और हाँ, भावनाओं को प्राकृतिक घटनाओं की तरह देखना, जैसे वो बारिश या धूप हों, ये आइडिया भी बहुत पावरफुल है।
और मेरे लिए ये देखना बहुत दिलचस्प था कि इतना तार्किक, इतना मुश्किल सा लगने वाला दर्शन असल में कितना प्रैक्टिकल हो सकता है। ये सिर्फ दिमाग की कसरत नहीं है, बल्कि वाकई में ज्यादा शांत और समझदार जिंदगी जीने का एक नक्शा देता है। और वो ईश्वर का बौद्धिक प्रेम वाली बात, मतलब समझ से पैदा होने वाली गहरी शांत खुशी, ये एक बहुत खूबसूरत लक्ष्य लगता है पाने के लिए।
सचमुच स्पिनोजा हमें एक तरह से हिलाते हैं, हमें चुनौती देते हैं कि हम दुनिया को और खुद को एक नए ढंग से देखें। शायद आज की इस बातचीत के बाद हम सब ये सोच सकते हैं, हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक भावना है जो हमें बार बार परेशान करती है, और क्या हम उसके कारणों को थोड़ा और समझने की कोशिश कर सकते हैं। शायद वहीं से कुछ बदलाव शुरू हो।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।